ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक एयर वाइस मार्शल SJ नानोतकर, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार अजय बनर्जी।
हम बात करेंगे रक्षा मंत्रालय की आत्मनिर्भरता के जो अभियान चला हुआ है, बजट में कैसी एलोकेशंस करी गई हैं और होने वाला एयरो इंडिया जो कि कल बेंगलुरु में शुरू होगा। मेरे साथ है AVM नानोतकर साहब। नानोतकर साहब, 6,81,210 करोड़ का बजट अगले वित्त वर्ष के लिए दिया गया है रक्षा मंत्रालय के लिए। ये माना जाए तो 9.53% की ये इंक्रीज है पिछले साल से। इसमें से कोई 1,48,722 करोड़ मॉडर्नाइजेशन के लिए रखा गया है। अगेन मैं अपने श्रोताओं को ज्यादा नंबर ना बताते हुए यहीं पर आपसे पूछूंगा कि ये सर मॉडर्नाइजेशन रक्षा मंत्रालय का बजट जो करीब 13% है पूरी की पूरी बजट में से, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इसका श्रेय निकलेगा हमारे रक्षा के क्षेत्र में?
ये जो आंकड़े आपने बताए हैं और परसेंटेज भी बताया है बजट का, और सीधा सवाल ये किया है कि मॉडर्नाइजेशन का बजट क्या एडिक्वेट है या नहीं है। ईयर ऑन ईयर पिछले कई सालों में हम बजट में सिर्फ पीछे वाला पेमेंट कैचअप कर रहे हैं। अगर मॉडर्नाइजेशन के बारे में अगर बताओ कि 13% से मॉडर्नाइजेशन का बजट बढ़ गया है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होना चाहिए हमारे सेना के मॉडर्नाइजेशन पर, यानी तीनों थल सेना, वायुसेना और नौसेना के मॉडर्नाइजेशन के ऊपर। दो तीन हिस्से में बांटता हूं मैं। एक तो अगर वायुसेना की बात करें क्योंकि ज्यादा करीबी विषय है वो, तो क्या हम मॉडर्नाइजेशन के तौर पे सारी चीजों में लड़ाकू विमान वेपन्स हमने फेज आउट करने के लिए तैयार रखे हैं, या तो हवाई जहाज हो या वेपन सिस्टम्स हो, ये सारी चीजें उस मॉडर्नाइजेशन के दायरे में आएगी वायुसेना के लिए। और उससे आगे बढ़ के हैं कि आज हम स्पेस की बात कर रहे हैं, वायुसेना अध्यक्ष ने भी बताया, अभी हमको अर्जेंटली सोचना पड़ेगा कि स्पेस बेस्ड एक्टिविटीज कैसे कंट्रोल में लानी है। अगर आप देखते हो तो वायुसेना को क्या ये 13% का क्या हिस्सा मिलेगा, कितना उनका मॉडर्नाइजेशन डायरेक्शन में होगा, इसको आगे चल के देखना पड़ेगा। वही चीज अगर हम थलसेना और नौसेना की देखें, नौसेना एक थोड़ा सा अलग रखेंगे क्योंकि नौसेना में आत्मनिर्भरता के ऊपर काफी पिछले 25-1 साल में जोर दिया था, लेकिन उनके भी जो सबमरीन वगैरह हैं और वेपन सिस्टम्स हैं उसके ऊपर उनकी जरूरतें हैं। जो एक्सपेंशन प्लान है जो नौसेना के मुखिया ने बताया था, तो उसके हिसाब से क्या वो 13% का उनको हिस्सा जो मिलेगा वो काफी है कि नहीं, तो ये एक क्वेश्चन मार्क मेरे मन में है। पक्का इसके ऊपर CDS और तीनों चीफ बैठ के और मंत्रालय के लोग बात करते होंगे। जो अनाउंस किया है मेरे ख्याल में कम है बजट, क्योंकि वो बैकलॉग का पेमेंट जो है उसके हिसाब से, और सबसे अहम वायुसेना के लिए जो फाइटर जहाज की कमियां हैं जो नंबर्स में, उसको कैसे पूरा करेंगे, क्योंकि LCA का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, एमका का अभी ठिकाना नहीं है जैसे चाहिए था वैसे, तो वो जो 126 में से सिर्फ 36 रफाल आया उसके आगे का क्या करेंगे। हम बात तो कर रहे हैं LCA Mark 1A की, Mark 2 की, लेकिन वो कब आएंगे, उसके लिए क्या ये 13% जो आपने बढ़ोतरी दिखाई है हिस्सा रखा है मॉडर्नाइजेशन के लिए, तो मेरे ख्याल में ये कम पड़ेगा और इसके ऊपर क्रिटिकली ध्यान देना पड़ेगा।
तीन चार बातें अपनी बड़ी अहम कहीं साइबर और स्पेस के बारे में। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि वो एक नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो साइबर है, स्पेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है और रोबोटिक्स है। इनके ऊपर कैपिटल का एक हिस्सा स्पेंड करा जाएगा। कैपिटल यानी जिससे नए जहाज, नई चीजें नई दी जाती है, नए विमान, ये सब नया इक्विपमेंट दिया जाता है सेनाओं का, उसको कैपिटल कहा जाता है। करीब 1,80,000 करोड़ का कैपिटल का बजट रखा है, उसमें ये नई टेक्नोलॉजीज का मेंशन है। तो ये नई टेक्नोलॉजीज जो हम बात कर रहे हैं ये अभी दुनिया में विकसित की जा रही है, तो हमारा स्थिति क्या है इन टेक्नोलॉजीज के ऊपर जो कि बातें हो रही है साइबर की, स्पेस की। जाहिर सी बात है हमारे श्रोताओं को मैं बता दूं कि हमारी स्पेस की एक डोमेन में हमारा एक तीनों सर्विसेज ने मिलकर कुछ काम करना शुरू किया है पिछले कुछ वर्षों में, मगर नानोतकर सर क्या ये नई टेक्नोलॉजीज का हम जो समीकरण करेंगे और अपनी सेनाओं में जोड़ेंगे उसमें क्या फर्क होगा, क्या नई चीज होगी?
आज तक पैसे की कमी थी और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी लोग डेवलप कर रहे थे लेकिन पेस थोड़ा सा स्लो था, काफी हद तक स्लो था। उसके साथ साथ हमें टेक्नोलॉजी डिनायल भी रहा है पास्ट में, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो पैसों का अलोकेशन जरूरी था और उस डायरेक्शन में हम कदम रख रहे हैं। आपने जो लिस्ट बताई चीजों की जो हम चाहते हैं कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजीज आए, उसमें से अगर हम सिर्फ स्पेस की और एरोस्पेस की बात करें तो हमें काफी ग्राउंड कवर करना है इस डायरेक्शन में, क्योंकि ओवरनाइट तो आप टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर सकते। अगर बाहर से आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करना चाहेंगे तो उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। दोनों मायने में, एक तो कीमत पैसों के मायने में देनी पड़ती है और टाइम भी उसमें लगता है। ये नहीं है कि आज आप पैसे लेके बाजार में जाओ, कल टेक्नोलॉजी लेके आओ और उसको इम्प्लीमेंट कर दो आप। दूसरी बात है कि अगर सिविल इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी लानी है और इम्प्लीमेंट करनी है तो काफी हद तक वो इजी हो जाता है, लेकिन डिफेंस में उस टेक्नोलॉजी को एप्लीकेट करना है तो उसके लिए काफी सारी आपको चीजें देखनी पड़ती है कि जो टेक्नोलॉजी दे रहे हैं वो डिनायल के तौर पे अगर खड़े रहे तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। दूसरी बात, उसको आपके एनवायरमेंट में आपको कैसे लाना है, उसको आपके इक्विपमेंट के साथ उसको कैसे जोड़ना है, तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ही अगला कदम ले सकते हैं। ये फैक्ट्स है। और पॉजिटिव इसकी बात यह है कि पहले हमारे पास पैसे ही नहीं एलोकेशन एडिक्वेट होता था और उसकी वजह से काम करने वाले लोगों को काम करने का उत्साह भी उतना ही कम था। तो उस हिसाब से हाँ, हमारे पास अभी डेडिकेटेड एलोकेशन है इन सेगमेंट्स के लिए। ये सब सेगमेंट्स में भी एलोक होगा। इसरो के साथ बैठ के तीनों सर्विसेज किस हिसाब से बात करते हैं, क्योंकि हमको कम्युनिकेशन सैटेलाइट चाहिए डेडिकेटेड टू सर्विसेज, हमको रिकॉग्निशन सैटेलाइट चाहिए डेडिकेटेड टू सर्विसेज। ये सारी चीजें अभी स्पेस डिवीजन अभी 2-स्टार हेड कर रहे हैं और वो काफी अभी 4-5 साल से उसमें काम हो रहा है। तो इन चीजों के लिए रियलिटी में लाने के लिए जो चाहिए उसके ऊपर अभी काम करना बहुत जरूरी है और जल्दी काम करना जरूरी है। बड़े सारे आइडियाज हैं, बड़े सारे व्हाइट पेपर्स वगैरह दिए हुए हैं इन विषयों के ऊपर, लेकिन वो अभी रियलिटी में लाने की जरूरत है हमको तुरंत, क्योंकि हम वैसे ही थोड़ा पीछे चल रहे हैं इन मामलों में। तो इसके लिए बहुत जल्दी काम करना पड़ेगा और ये पैसे जो एलोकेशन है उसका यूटिलाइजेशन तीनों सर्विसेज ने मिलकर और CDS उसके ऊपर नजर रखते होंगे और डिफेंस मिनिस्ट्री उसके ऊपर काम कर रही होगी, तो इसका इफेक्टिव इम्पैक्ट होना जरूरी है।
भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने आज एयर इंडिया के बारे में विस्तारित रूप से बताया। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता सुधींद्र की एक रिपोर्ट बेंगलुरु से।
2 साल बाद बेंगलुरु में फिर से एयरो इंडिया शो होने वाला है। इस 5 दिन के विशाल कार्यक्रम में रक्षा क्षेत्र से जुड़े नेता, व्यवसाय से जुड़े कंपनियों के प्रतिनिधि, अनुसंधान और विकास के क्षेत्र से आए जानकार इसमें भाग ले रहे हैं। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, एयर चीफ मार्शल AP सिंह के अलावा कई गण्यमान्य अतिथि इसमें भाग लेंगे। रक्षा सचिवों की बैठक, CEO राउंड टेबल, आईडेक्स स्टार्टअप कार्यक्रम और हवाई करतब इस बार के प्रमुख गतिविधि हैं। इस बार के एयर शो में एक विचार चर्चा का विषय बन गया है, भारत को 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA और HAL मिलकर एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA को देश में ही बनाने का काम कर रहा है। एरो इंडिया शो में रशिया ने Su-57 फैलॉन और अमेरिका ने F-35 लाइटनिंग लड़ाकू विमान का प्रदर्शन किया है, तो चर्चा का विषय ये है कि क्या भारत इनमें से किसी को खरीदेगा या नहीं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
बड़ा अच्छा आंकड़ा इस बार के बजट में आया था आत्मनिर्भरता के ऊपर। बजट में एक खास तौर पे मेंशन है कि करीब 1,11,000 करोड़ रुपए खर्च होगा, जो कि केवल हमारी निजी भारतीय कंपनियों से साजो सामान, इक्विपमेंट, वेपन्स लेने में खर्च होगा। ये 1,11,000 करोड़ का आंकड़ा है सर। सो क्या आपको लगता है कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री आत्मनिर्भरता का जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने एक टारगेट रखा है उसको मीट कर सकती है?
ये जो आंकड़ा आपने बताया 1,11,000 करोड़ रुपए का, कई सारे सेक्टर्स हैं जिसमें हमारी निजी कंपनियों ने काम किया हुआ है, अच्छा काम किया हुआ है, काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी टाटा का जहाज C-295 ऑलरेडी इंडक्ट हो चुका है और उसको देखते हुए ऐसे लग रहा है कि हमारा जो N-32 का रिप्लेसमेंट चाहिए हमें, उस तरफ भी हम ध्यान दे सकते हैं। अगर बजट एलोकेशन है और अगर टाटा जैसी कंपनी इसको इस्तेमाल करना चाहती है और इस्तेमाल करने में उनको मदद होती है, तो मेरे ख्याल ये हो सकता है। भारत फोर्ज ने कई प्रोडक्ट्स किए हुए हैं। आपने एक वेपन्स का जिक्र किया, वेपन्स के सेक्टर में मेरे को नहीं लगता है कि जितना काम होना चाहिए उतना हुआ है। हम वेपन्स के लिए फिर भी अभी फॉरेन कंट्रीज के पास जा रहे हैं। कई सारे वेपन्स डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स है DRDO के, कई सारी वेपन्स सक्सेसफुल हुई है, पर वो कॉन्टेम्पररी बकेट में आती है कि नहीं उसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क है। और जो जो आती है उनको प्रोडक्शनाइजेशन करने में अभी तो कम से कम 3-1 साल लगेंगे। हमारी निजी कंपनियों के पास ताकत है बजट यूटिलाइज करने की, लेकिन वो सही डायरेक्शन में लेके जाने की जरूरत है उसको, क्योंकि जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज आई हुई है, जैसे कि अभी कई कंपनियां हैं, कई स्टार्टअप्स हैं, छोटे कंपनियां हैं जिन्होंने, इवन PSUs ने भी काफी सारी डेवलपमेंट पिछले 5-1 साल में करके दिखाई है। ये सारी चीजें अगर हम सही मायने में प्रोडक्शनाइज करके और सर्विसेज यूटिलाइज करती है उसको सही चीजों को चुन के, तो मेरे ख्याल ये बजट आपको कम पड़ने वाला है।
एक बजट में ही आत्मनिर्भरता के ऊपर दो बड़े अहम चीजें थी। एक तो इंडियन कोस्ट गार्ड को करीब 9600 करोड़ की एलोकेशन है नए जहाज जो उनके पोत होते हैं वो लेने के लिए, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट लेने के लिए और हेलीकॉप्टर लेने के लिए। साथ के साथ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सर, जो कि चीन के साथ लगते हुए सीमाओं के ऊपर सड़कों का काम करती है, टनलिंग का काम करती है, कोई 7100 करोड़ के एलोकेशन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को भी है। केवल कई टारगेटेड जो बजट में बताए गए हैं, टनल यांगसे के पास जहां पर 2020 के अंदर हमारा चीन और भारत के सैनिकों के बीच में झड़प भी हुई थी, वहां पर जम्मू कश्मीर में कोई टनल्स के ऊपर काम हो रहा है। तो इन दोनों चीजों को सर, कोस्ट गार्ड के 9600 करोड़ और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 7100 करोड़ तकरीबन के एलोकेशन को आप कैसे देखते हैं, जबकि देखा जाए कि भारत क्षेत्र को मजबूत करने के लिए और समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने के लिए?
हमारा जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का इलाका है पूरा का पूरा जो चाइना और पाकिस्तान से लगा हुआ है, उसमें रोड्स की हालत उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए और उसी के लिए काफी हमारा एफर्ट यूज होता है। इंटर वैली ट्रांसफर करना होगा ट्रूप्स को, इक्विपमेंट को, तो उसके लिए अगर ये सारे रास्ते अच्छे हो जाए और जो क्लासिफिकेशन के रास्ते होने चाहिए आपके मूवमेंट्स के लिए और बाद में लॉजिस्टिक सप्लायर्स के लिए, तो हर जगह है नहीं। और कई जगह अभी हाल ही में मैं नॉर्थ ईस्ट में होके आया, तो कई जगहों पे वो रास्तों की हालत ऐसे खराब है कि नॉर्मल व्हीकल तो जा ही नहीं सकते। आप रेगुलर सप्लाईज की बात कर रहे हैं, वेपन्स की बात कर रहे हैं और कई जगहों पे आपको हेवी इक्विपमेंट ट्रांसफर करना है, तो इसके लिए बीआरओ को जो बजट अलॉट हुआ है मेरे ख्याल अगर वो पूरा का पूरा इस्तेमाल हो जाए तो सारे सेक्टर्स कवर नहीं होंगे पर उसके लिए एक बूस्ट मिल जाएगा कि वो रोड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा हो जाए। और आपने जो कोस्ट गार्ड का जिक्र किया, ये बॉम्बे अटैक के बाद में अभी कई साल हो गए लेकिन जो इक्विपमेंट मॉडर्नाइजेशन कोस्ट गार्ड में होना चाहिए था उतना हुआ नहीं है। हमने फोकस ज्यादा रखा था, जो हमारी कमियां थी नेवी के पास उसके ऊपर ज्यादा फोकस रहा है, तो आई थिंक ये एलोकेशन बहुत सही डायरेक्शन में चल रहा है। ओनली थिंग ये जो इक्विपमेंट हम लाने की बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी इक्विपमेंट प्रोडक्शन शुरू हो गया है हमारे डॉक्स में और उसको मॉडर्नाइजेशन की जो जरूरत है उसमें वो डालने के लिए जो पैसों की कमी महसूस कर रहे थे कोस्ट गार्ड, तो मेरे ख्याल ये उस डायरेक्शन में काफी अच्छा बूस्ट मिलेगा उनको।
कल से एयरो इंडिया स्टार्ट है बेंगलुरु में, करीब 900 एग्जीबिटर होंगे वहां पर, करीब 54 फॉरन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होंगे, 52 डोमेस्टिक कंपनियां होंगी और करीब 78 मुल्कों के कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां पर आएगा। ननोत्कर साहब, एक फाइटर लड़ाकू विमान के पायलट रहे हैं आप, एक बड़ी अहम चीज उठ के आ रही है कि रूस का सुखोई 57 और अमरीकी F-35 विमान, दोनों ही पांचवी श्रेणी के लड़ाकू विमान है, वो दोनों बेंगलोर में होंगे, आपकी छोटी सी टिप्पणी दोनों लड़ाकू विमानों के ऊपर।
देखिए फिफ्थ सिक्स जनरेशन फाइटर तो हम देख ही रहे हैं, अपने लिए लग रहा था कि हमारा एमका प्रोग्रेस करेगा फास्ट और वो प्रोग्रेस जिस तरह से करना चाहिए था उस तरह से नहीं हो रहा है, तो नेचुरली हमारी दृष्टि जाएगी इन फाइटर्स की तरफ। और आज अगर हम चाइना की तरफ देखते हैं, उनकी कैपेबिलिटी की तरफ देखते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो उस कैपेबिलिटीज को असेस करते हैं और चाइना जो चीजें पाकिस्तान को देने के लिए तैयार है उन चीजों को देखते हैं, तो आई थिंक ये क्लास का जो जहाज है फिफ्थ जनरेशन फाइटर जो डिस्प्ले पे, पिछली बार F-35 आया था, Su-57 नहीं आया था, इस बार अगर दोनों आ रहे हैं तो उसमें एक तो तुलना होगी क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबरी करने की कोशिश करेंगे और जहाज ही नहीं उसके साथ जो वेपन्स वगैरह देखने को मिलेंगे या सुनने को मिलेंगे जो डेमोन्स्ट्रेशन करने की कोशिश करेंगे वो बहुत अहम बात होगी हमारे लिए और वो देखने के लिए मैं खुद उत्सुक हूँ क्योंकि Su-57 तो पहली बार डिस्प्ले कर रहा है इंडिया में, F-35 को हमने कुछ हद तक पिछली बार देखा था, मैं खुद भी एक्साइटेड हूँ और मेरे ख्याल पूरे जो लोग हैं जिनको ये एसेस करने की जरूरत है किस तरह के जहाज है, क्या कर सकते हैं, किस तरह के वेपन्स वो हमारे लिए ला सकते हैं और उससे एमका को एक थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा मेरे ख्याल में, एक थोड़ा सा जोरदार धक्का मिलेगा HAL को कि भाई और डेवलपमेंट एजेंसीज को कि भाई ये आपके सामने खड़ा है और इस तरह का हमारे लिए इक्विपमेंट बनाना बहुत जरूरी है जल्दी से जल्दी। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ये दोनों जहाज आमने सामने खड़े होंगे।
कल इंतजार करते हैं, एयरो इंडिया शुरू होगी बेंगलुरु में जहां पर ये दोनों लड़ाकू विमान सुखोई 57 रूस का और F-35 अमेरिका का दोनों आमने सामने होंगे, बेंगलुरु के स्काईज के ऊपर देखा जा सकेगा। भारत की आत्मनिर्भरता के ऊपर बात करने के लिए ननोत्कर सर बहुत बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया राजय।
अभी आप सुन रहे थे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक एयर वाइस मार्शल SJ ननोत्कर, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार अजय बनर्जी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।